اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے،
اوم شانتی۔ परम सत्ता की पहचान इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य आदरणीय शिलू बहन जी उपस्थित हुए हैं। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र अनुरोध है, एक हाथ के ताली से आप शिलू बहन जी का भी स्वागत करेंगे। तलाश उस परमात्मा की हम जिनको सदियों से अनेक जन्मों से ढूंढते रहे, कहां कहां ढूंढा नहीं हमने उन्हें, मंदिरों में मस्जिदों में, फिर कहा क्या अपने ही अंदर है, कौन है परमात्मा, आखिर क्या उनसे हम पर्सनल रिश्ता जोड़ सकते हैं। आइए, आज ये वक्त आ चुका है, स्वयं खुदा ने जो अपना परिचय दिया है, आज शिलू बहन जी के द्वारा हम सुनेंगे परम सत्ता की पहचान इस विषय पर। मैं शिलू बहन जी के लिए कहना चाहूंगी, बीती को पावन बनाना आपसे सीखे कोई, जीवन को सद्गुणों से सजाना आपसे सीखे कोई, जीवन के सफर में हर लम्हा कह गया भगवान को अपना बनाना आपसे सीखे कोई, भगवान को अपना बनाना आपसे सीखे कोई। अभी मैं आदरणीय शिलू बहन जी से अनुरोध करती हूँ परम सत्ता की पहचान इस विषय पर प्रकाश डाले। आदरणीय शिलू बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, माताएं ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो ना, सबको शांति से बहुत प्यार है, अशांति तो कोई भी नहीं चाहता, हम सब शांति चाहते हैं। तो जितने ही हम शांति प्रिय होंगे उतने ही हम प्रभु प्रिय भी होंगे, यानी परमात्मा से भी हमारा बहुत प्यार होगा। तो आप सभी को परमात्मा से भी बहुत प्यार है ना, है हा? ईश्वर से बहुत प्यार है, सभी ईश्वर प्रेमी आत्माएं हो। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब किसको याद किया जाता है, परमात्मा को। हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु कह करके हम उनको याद करते हैं, उनसे शांति मांगते हैं। तो प्रभु से प्यार तो बहुत है, लेकिन क्या उस प्रभु को जानते भी हैं? मानते तो सब हैं, पर जानते भी हैं वो प्रभु कौन है, वो कहाँ है, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, कब मिलेंगे, क्या उनसे प्राप्ति होगी, कहाँ मिलेंगे, इन सब प्रकारों के जो प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं, तो मनुष्य तो आज ईश्वर को ढूंढ ही रहा है, भले मानता है पर पहचानता नहीं। अगर पहचान जाए तो ये सब प्रश्न भी समाप्त हो जाए, और ये भी शंका न रहे कि मन ईश्वर में नहीं लगता, क्योंकि हम सबकी यही शिकायत है, हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, जप करते हैं, तब हवन तीर्थ यात्राएं बहुत कुछ, प्रार्थना वंदना बहुत, आस्था है ईश्वर में, बहुत प्यार है, और ये सब प्रयास करते हैं ईश्वर में मन लगाने लिए। लेकिन क्या हम सबकी शिकायत है कि ये चंचल मन परमात्मा में लगता नहीं? तो क्यों नहीं लगता हमारा मन ईश्वर में, कभी ये भी सोचा? आज किसी देहधारी व्यक्ति में अपना मन लगाना चाहते हैं तो कभी ये शिकायत नहीं आती है कि मन नहीं लगता। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मेरा मन मेरे पिता में नहीं लगता, मेरी माँ में नहीं लगता, मेरी पत्नी में नहीं लगता, मेरे टीचर में नहीं लगता, कोई ऐसी कभी किसकी शिकायत नहीं आई। लेकिन मेरा मन परमात्मा में लगता नहीं है, ये सबकी शिकायत है। वैसे तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, हाँ त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम हमारे माता पिता बंधु सखा शिक्षक देवों का देव हो। तो जिसकी इतनी हम महिमा गाते हैं, जिसके साथ इतने संबंधों का वर्णन करते हैं, लेकिन शिकायत भी साथ साथ करते हैं कि मन तो लगता नहीं है। तो क्या कारण है मन ईश्वर में नहीं लगता? राजयोग उसका कारण बताता है और फिर निवारण भी बताता है। क्यों हम मन नहीं लगा पाते हैं परमात्मा में? क्योंकि मन लगाने वाली जो आत्मा है वो खुद को ही नहीं जानती थी। हम अपने आप को देह समझ बैठे थे तो मन कैसे लगे ईश्वर में? देह समझने से जो देह के साथ संबंधित व्यक्ति हैं उनमें ही मन जाएगा। देह के ही माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो देह से संबंधित है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तब मन परमात्मा में लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब क्या कहते हैं? हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। उस समय उसकी आत्मा भी याद आती है और परमात्मा को भी याद करते हैं। और फिर क्या कहेंगे? इनकी आत्मा कहाँ गई? भगवान के पास गई। और शरीर के लिए कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, या हे प्रभु इनके शरीर को शांति देना, ऐसे नहीं कहेंगे। क्योंकि मृत्यु का मतलब ही है शरीर की शांति। शरीर तो शांत हो जाता है पर आत्मा उस समय याद आती है और उनकी शांति की कामना करते हैं। शरीर को तो पंच तत्वों में विलीन करना है, अग्नि संस्कार करके शमशान घाट में ले जाकर फिर कहेंगे पंच तत्वों में वो शरीर विलीन हो गया। और आत्मा के लिए क्या कहेंगे? वो परमात्मा के पास गया। क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है। इसलिए पंच तत्वों से ये शरीर बना और ये पंच तत्वों में वापस जाएगा। और आत्मा परमात्मा के घर से आई है, परमात्मा के पास वापस जाएगी। इसलिए जब तक हम खुद को आत्मा निश्चय नहीं करते तब तक मन परमात्मा में नहीं लगता है। तो आज सुबह आपको आत्मा की पहचान दी गई। अभी अगर किसी से पूछा जाए आप कौन हो तो क्या जवाब देंगे? सब एक सुर में बोले कौन हो? आत्मा। मैं फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ ये नहीं, ये तो शरीर का नाम है, शरीर की जाति, शरीर का धर्म, शरीर का व्यवसाय, पर आत्मा जो परमात्मा से आई है वो मैं हूँ और परमात्मा के पास ही वापस जाना है। तो आत्मा निश्चय करने के बाद मन परमात्मा में लग सकता है, लेकिन फिर दूसरी शिकायत आती है कि हम मन तो लगाते हैं लेकिन क्यों नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर कौन है यही पता नहीं। आज एक कुमारी है, उसकी शादी करनी है, लेकिन अभी तक कोई लड़का पसंद का मिला नहीं है। मान लो तो वो लड़की तो यही कहेगी ना, मन किस में लगाए, अभी कोई जीवन साथी मिला नहीं है। और जिस घड़ी कोई लड़का पसंद आ जाता है, पसंद कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा, उसी में लग जाएगा, क्योंकि संबंध जुड़ गया। अब परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि पहली बात है कि वो ईश्वर है कौन यही पता नहीं है। और सचमुच भले हम संबंधों का वर्णन भी करते हैं, माता पिता बंधु सखा तो माता पिता हम बालक तेरे, ये कहते भी हैं, लेकिन कैसे वो हमारे माता पिता हैं ये नहीं जानते। इसलिए परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, उनके साथ जो हमारा संबंध है वो कहीं टूट गया है, वो हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इसीलिए मन लगता नहीं। तो आज आपको उस परमात्मा की पहचान दी जाएगी, जो पहचान स्वयं परमात्मा ने हमें दी है, और वो पहचान मिलने के बाद फिर शाम को आपको बताया जाएगा कैसे मन उसमें लगाना है। तो कौन है परमात्मा हम जानेंगे, और फिर पहचान मिलने के बाद मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तीसरा विघ्न भी आता है, और वो कौन सा विघ्न है कि मन आज इतना दूषित हो गया है, इतने विकार भर गए हैं मन के अंदर, चंचल हो गया है, इंद्रियों के आकर्षण में फंस गया है, संसार के वैभवों में इतना तो लिप्त हो चुका है मन, अब उसमें ईश्वर स्थान ले, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे दूध को शुद्ध रखने के लिए बर्तन भी तो शुद्ध चाहिए, अगर गंदे बर्तन में दूध को रख दिया तो दूध तो मैला हो जाएगा, खटाई वाले बर्तन में रख दिया तो फट जाएगा। इसलिए दूध को उसी स्थिति में रखने के लिए पात्र भी इतना ही साफ और स्वच्छ चाहिए। तो मन है पात्र, बर्तन, जिसमें परमात्मा की याद ठहरेगी। लेकिन इस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, छल कपट, न जाने कितनी विकृतियां मन के अंदर है। इसके कारण अगर हम मन में ईश्वर को स्थान देना भी चाहते हैं तो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता है। इसीलिए इस मन को कैसे स्वच्छ करें वो भी राजयोग सिखाता है। कपड़े को धोने लिए तो आप अच्छे सर्फ में डालेंगे, बर्तन को धोने के लिए आप अच्छा मंजन यूज करेंगे, दांतों के लिए ये सब आप जानते हैं कैसे उनको साफ करना होता है, लेकिन मन को कैसे साफ करना होता है वो आज शाम को आपको और अधिक बताएंगे। लेकिन अभी इतना है कि वो आखिर है कौन, उसको हम पहचानेंगे। तो आत्मा का परिचय आपको सुबह क्या मिला कि आत्मा एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। आत्मा का जो मूल गुण है वो वही है जो हम जीवन में चाहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सात मूल गुण आत्मा के अंदर ही निहित है, ये बाहर से नहीं आएंगे। इसीलिए शांति के लिए हमको बाहर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, बस आत्म अभिमानी हो जाओ, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो शांति तो आपके गले का हार है, आपके अंदर ही है। इसीलिए कहते शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर देखो, अंदर झांको, माना आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा के अंदर ही वो गुण है। और जब हमें यह पता चलता है कि मैं आत्मा इन गुणों के स्वरूप हूँ और ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसको आत्मा ने धारण किया है, तो मैं आत्मा कहाँ हूँ शरीर में, तब आत्मा का टेम्पररी घर ये भ्रकुटी, ये हम चिंतन करते हैं। मैं आत्मा इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर साधन है, मैं साधक हूँ। तो मुझ आत्मा का असली धाम ये संसार नहीं है। हम क्या कहते हैं, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम दो दिन के मेहमान हैं और ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। शरीर इस दुनिया में मेहमान नहीं है, वो तो यहाँ का ही है, यहाँ ही मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा जरूर मेहमान है। आत्मा इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर एक अभिनेता है जिसने यह देह रूपी वस्त्र धारण किया है। अब जब हम अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि खुद को तो पहचाना, अब खुदा को पहचानना है, पर उस खुदा की, ईश्वर की, प्रभु की, भगवान की पहचान दे कौन। आज आत्मा खुद को ही नहीं जानती थी, इसीलिए ईश्वर को कहाँ जानेगी। लेकिन परमात्मा ही आकर के अपनी भी पहचान देते हैं और हम आत्माओं की भी पहचान देते हैं। तो जब ये पूछा जाता है भगवान कौन है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, वो कब आता है, कैसे हम मिल सकते हैं, तो कहते ये सब जवाब हमको नहीं आते। लोग यही कहते हम नहीं जानते, इसीलिए वेदों में नेति नेति कह दिया, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। वास्तव में परमात्मा खुद अपना अंत आकर के देते हैं। जैसे आज किसी व्यक्ति के बारे में 10 लोग 10 बातें सुनाए, अलग अलग विचार उस व्यक्ति के लिए सुनाए, तो 10 लोगों के 10 प्रकार के अलग अलग विचार सुनकर तो वो व्यक्ति मुझ जाएगा कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है, हर एक उसके लिए अलग अलग बातें कह रहा है, आखिर ये कैसा होगा। लेकिन जब वो खुद इनसे मिलता है और फिर अपनी पहचान उसको सही रूप में देता है, तब उसको समझ में आती है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो परमात्मा के बारे में आज दुनिया में इतनी मतें हैं, एक मत न मिले दूसरे से, इसलिए कहा गया है तुंडी तुंडी मते बिना, जितने दिमाग है उतने विचार है, जितने सिर है इंसान है उतने हर एक के अपने अपने विचार है। तो कई कहते इतने सारे विचार क्यों हैं? वैसे तो एक तरफ तो हम यही कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, तो अगर वो एक है और वो सत्य है तो फिर इतनी सारी भिन्न भिन्न मतें क्यों है ईश्वर के लिए। और वास्तव में ये किसी का दोष भी नहीं है, क्यों, क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते हैं, आज मेरे सामने ये चीज है, ये रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, इसको हम जानते हैं ये रिमोट है। कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो चमचा है, स्पून है, हम कहेंगे अरे नहीं भाई ये तो रिमोट कंट्रोल है, ये थोड़ी स्पून है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी कह देगा। कोई कहेगा ये तो एक डंडी है, कुछ भी कह दे, लेकिन ये तो बड़ी काम की चीज है उस हिसाब से। तो जो जानता है वही बता सकता है ये क्या है। अब ईश्वर के बारे में इतनी सब भिन्न भिन्न मतें क्यों है? पहला कारण है कि हम उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। कई कहते हैं कि क्यों नहीं दिखाई देता है, अगर है तो दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये भी सोच गलत है कि दिखाई देना चाहिए, क्योंकि संसार में कई ऐसी चीजें जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते। ये आवाज आपकी आंख आप कानों से सुन सकते हैं, लेकिन देख तो नहीं सकते ना आवाज को। एक एनर्जी है, एक शक्ति है। तो परमात्मा को इन आंखों से कैसे देख सकेंगे? कोई स्थूल रूप थोड़ी है। और दूसरी बात है कि ये आंखें जो है वो तो केवल स्थूल चीजों को देखेगी, इसलिए उनको तो देखेगी नहीं क्योंकि वो स्थूल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि परमात्मा के महावाक्य हैं कि जो जो मुझे जिस भावना से याद करता है मैं उसकी भावना का उसको भाड़ा देता हूँ, उसी अनुसार उसको अनुभव कराता हूँ, ये भी है। तो कई लोग समझते हैं भावना का भाड़ा देता है, भावना अनुसार वो अनुभव कराता है, तो ये सारे ही रूप उसी के ही है। कई तरह से समझ लेते हैं। कोई हनुमान का भक्त होगा वो कहेगा मेरे लिए तो हनुमान ही भगवान है। कोई गणेश का भक्त होगा कहेगा मेरे लिए तो गणेश ही भगवान है। कोई देवी का भक्त होगा कहेगा मेरे लिए तो यही भगवान है। तो अब हर एक का भगवान तो अलग अलग नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो एक परमात्मा और वो सत्य है। तो ये दो कारणों के वशों के कई प्रकार की मतें ईश्वर के बारे में हो गई है, और परिणाम स्वरूप हम दुनिया में देखते हैं कि दो प्रकार की विचारधाराएं हो गई है, या कहें तीन प्रकार की। दो कौन सी? एक वो है जो बिल्कुल अंधविश्वास में फंसे हुए, अंधविश्वास, जिसने जो कहा उसको मान लिया। विश्वास एक बहुत अच्छी चीज है, आस्था, विश्वास, भावना, ये बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। लेकिन जब अंधविश्वास आ जाता है, अंधश्रद्धा आ जाती है, वह अंध शब्द आने से हम ईश्वर के नजदीक नहीं जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और दूसरी ओर क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, तो कई इसको विश्वास भी नहीं करना चाहते हैं, श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, और नास्तिक बन जाते हैं, कहते भगवान भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो एक और है बिल्कुल अंधविश्वास, और दूसरी ओर है एकदम नास्तिकता। और बीच में भी ऐसा मध्य लोग हैं, मध्य में, जो अंधविश्वास में भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, लेकिन मध्य मार्ग अपनाते हैं। क्या है वो मध्य मार्ग? वो कहते ठीक है भगवान है तो भी ठीक है, हम वितर्क तर्क वितर्क नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बहस नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो भी ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ेगा है या नहीं है, हमको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये जो कहते हैं हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये वास्तव में अपने को बहुत धोखे में डाल रहे हैं, क्योंकि हमको तो बहुत कुछ लेना देना है उनसे। है लेना देना उनसे या नहीं, क्या समझते हैं? है या नहीं है उनसे लेना देना? है ना। तो हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम जब उनको कहते हैं कैसे लेना देना नहीं है, कहते अगर भगवान है भी तो यही कहेगा ना, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, जीवन में अच्छे चरित्र को अपना, वो तो हमारे पास है ही। हम बेईमानी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं, सबको सबकी मदद करते, तो हम तो है ही अच्छे। इसलिए ईश्वर है नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतने तक ही हम संतुष्ट न हो जाएं, क्योंकि अगर हम परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ेंगे तो हमको इतनी शक्ति मिलेगी उनसे, जो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे थे और अचानक उनके जीवन में क्या बदलाव आ गया, जो बिल्कुल ऐसे क्रोधी बन गए, अभिमानी बन गए, घमंडी बन गए, और जो ईश्वर के प्रति कुछ भावना थी वो भी सब खत्म हो गई, ऐशी बन गए, धन बहुत आ गया तो सब कुछ तिरस्कार लोगों को करने लगे, दुख देने लगे, भाई क्या बात है, ये तो कितना अच्छा व्यक्ति था, क्या हो गया? क्योंकि जीवन में कोई ऐसी बात आई जिसका वो सामना नहीं कर सका तो उसके कारण एंटी हो गया, विरोधी हो गया, संसार ही उसके लिए जैसे कि कुछ भी नहीं है। तो भगवान से भी रूठा तो दुनिया से भी रूठा, ऐसी हालत हो जाती है। इसका कारण है कि परमात्मा से योग नहीं है, उनसे शक्ति नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मध्य मार्ग में रहना और समझना कि नहीं, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, जीवन में कई ऐसी बातें आ जाएगी जो आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए वो आंतरिक शक्ति कहाँ से लाएंगे, वो ईश्वर से ही प्राप्त होगी। इसलिए नास्तिक भी नहीं बनना है, अंधविश्वास में भी नहीं फंसना है, लेकिन परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना है, और वो पहचान हमें खुद देते हैं। वो आज कितनी मते हैं, तो कई कहते हैं आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, आत्मा और परमात्मा ये केवल दो अलग नाम है दोनों एक ही, दोनों के बीच में अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा हट जाए तो आत्मा ही परमात्मा है। अब थोड़ा सोचने की बात है, अज्ञान का पर्दा किसको लगा, आत्मा को लगा या परमात्मा को लगा? अगर आत्मा ही परमात्मा थी तो पर्दा तो क्या परमात्मा को लगा, जो आत्मा बन गई फिर वापस परमात्मा बन जाएगी? परमात्मा को तो कभी अज्ञान होता ही नहीं है, वो तो है ही ज्ञान का सागर। और ये दो शब्द है आत्मा और परमात्मा, तो इससे सिद्ध है कि अलग, दो अलग शक्तियां हैं। आज हम कई प्रकार के मिनिस्टर्स को जानते हैं, परंतु सबसे बड़ा मिनिस्टर कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री। एक स्टेट में भी कितने मिनिस्टर्स होते हैं, पर उसमें भी जो मुख्य है उनको मुख्यमंत्री कहेंगे। तो आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। आत्माओं को किसी को पाप आत्मा कहेंगे, पुण्य आत्मा कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे, महात्मा कहेंगे, बहुत कुछ आत्मा के बारे में कहेंगे, लेकिन परम आत्मा एक ही है, आत्मा ही अनेक है। कैपिटल GOD जब हम कहते हैं तो कैपिटल GOD माना वो एक ही है, और सोल आत्मा तो अनेक हो गई। इसीलिए दोनों एक समझ लेने से भी हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं। फिर कई कहते हैं आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसका टुकड़ा है, उसका भाग है। हम कहते हैं टुकड़ा का भी मतलब क्या है? आज मेरे पास ये रुमाल है मान लो, और हम इसके टुकड़े टुकड़े करते, धागे निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, तो इस प्रकार तो रुमाल तो नहीं रहेगा ना, ये इसके धागे निकल गए तो ये तो खंडित हो गया। अगर परमात्मा के आत्मा अंश है तो अंश तो इतने सारे अंश हो गए, करोड़ों करोड़ों अंश हो गए तो उस परमात्मा का तो अस्तित्व फिर कहाँ रहेगा। तो अंश का भी मतलब हमें समझना होगा। अंश इसका मतलब कोई टुकड़ा नहीं जो हम भाग होकर के उसमें से निकले, लेकिन अंश का मतलब है कि संख्या में अंश। अभी ये 10 लीटर का पानी हो और उसमें 1 लीटर मैंने लिया तो वो हो गया भाई उसका अंश, उसका पार, उसका थोड़ा भाग। लेकिन परमात्मा का तो ऐसा भाग बनता नहीं है, जो 10 में से 1 लीटर गया तो 9 लीटर बना। तो संख्या में अंश का हिसाब अलग चीज है और गुणवत्ता में अंश का हिसाब अलग चीज है। तो जहाँ संख्या की बात है वहाँ चलो हम कहेंगे थोड़ा पार्ट, लेकिन गुणवत्ता तो वही है ना। जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। इस हिसाब से कहेंगे भाई 1 लीटर निकाला, पर वो 1 लीटर तो निकला नहीं क्योंकि परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अंश माना जो परमात्मा के गुण हैं वो परसेंटेज में आत्मा के अंदर भी गुण हैं, वही गुण। इसलिए गुणवत्ता वही है, लेकिन जो गुणों का सागर है परमात्मा, आत्मा के लिए कहेंगे वो गुण की स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ये नहीं कि अशांत स्वरूप है या नफरत स्वरूप है, नहीं, आत्मा का भी वही गुण है शांति और प्रेम जो परमात्मा का गुण है। इसलिए आत्मा उसका भाग है ये नहीं कहेंगे। आत्मा का अस्तित्व भी सदा ही है और परमात्मा का अस्तित्व भी सदा ही है। इसलिए अजर अमर अविनाशी कहते आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा न जलती न कटती न दुखती न सुखी होती न गीली होती। लेकिन आत्मा पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा ये जरूर बनती है। इसीलिए अंश की बजाय अगर हम ये कहेंगे कि परमात्मा उसकी वो संतान है, बच्चा है, तो बच्चे का अपना अलग अस्तित्व है। पिता बहुत बड़ा आदमी होगा पर बच्चा भी इतना बड़ा बने ये जरूरी नहीं है। पिता के संस्कार और होंगे, बच्चे में वो संस्कार आएंगे लेकिन इतने तक वो महसूस करे वो नहीं होंगे। या बच्चा तो इतना होशियार होगा, पिता तो इतना होशियार नहीं भी होगा, ऐसे भी होता है। इसीलिए अंश कहना इसके पीछे एक राज है कि गुणवत्ता वही है, वही गुण है। फिर कई कहते हैं कि अच्छा परमात्मा तो सब जगह है, हम सब उसी के ही स्वरूप हैं। अब ये भी थोड़ा समझना होगा, आज हम सब उसी के स्वरूप हैं, वो सब जगह है ऐसे ही मान लिया तो आज दुनिया में इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब प्रकार का बुरा आचरण सिवाय सदाचार आज दुनिया में हमें दिखाई देता है। तो अगर वो है ही सब जगह तो ये सब बुरा आचरण क्यों दुनिया में होना चाहिए? सब अच्छे होने चाहिए, हम सब ईश्वर के स्वरूप है तो। लेकिन नहीं, आत्मा, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना अस्तित्व है। जैसे एक ड्रामा के अंदर, एक नाटक में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, एक न मिले दूसरे से। यहाँ भी एक एक्टर का पार्ट न मिले दूसरे की एक्टिंग से। इसीलिए सब जगह है तो इसका भावनात्मक अर्थ है। भावनात्मक अर्थ क्या है? कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, सदा ईश्वर को अपने साथ रखो। इसीलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कई भावनात्मक रीति में आके ये भी कह देते हैं कि वही सब कुछ करता है कराता है, करण करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ। अब ये भी भावनात्मक स्थिति है कि सब कुछ वही करता है, वास्तव में करती तो आत्मा है और आत्मा जैसा करती है वैसा भरेगी। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। अगर आत्मा बुरा कर्म करेगी पाप कर्म करेगी तो अपना ही शत्रु बन के अपने को दुख देगी, अगर अच्छे कर्म करेगी तो अपना ही मित्र बन के अपने को सुख देगी। तो आत्मा कर्ता और भोक्ता के रूप में हो गई, परमात्मा तो अकर्ता अभोक्ता है, सुख दुख दोनों से न्यारा है। इसीलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। भावनात्मक दृष्टि से हमने कह दिया भगवान सब जगह है, ये बहुत ऊंची बात है। कभी डरो नहीं किसी से क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। तो परमात्मा वास्तव में कहाँ है? कई फिर कहते वो तो सबके दिल में बसता है। अब ये भी एक भावनात्मक शब्द है दिल। दिल में किसको हम स्थान देते हैं जिससे बहुत प्यार होता है? तो भगवान को अगर दिल में स्थान देते हैं इसका मतलब भगवान से बहुत प्रीत है। पर अगर ये दिल की बात करें जो धड़कता रहता है, हाँ उसकी हार्ट बीट होती है, पल्स होता है, कई माना हार्ट के बीट सब देखते हैं, इको करते हैं, मर जाने क्या क्या हार्ट का करते हैं, तो क्या परमात्मा का भी हार्ट बीट या इको आदि होगा? ऐसी तो बात नहीं है, ये भावना का स्थान है। तो जब हम भावनात्मक बात को समझने लगते हैं तब महसूस करते हैं वो सब जगह भी है, सबके दिल में भी है। फिर कई कहते हैं वो तो सातवें आसमान में रहते हैं। अब सातवां आसमान कौन सा है? सात नरक है, सात स्वर्ग है, यहाँ तक मानते हैं। अभी कोई देख के तो आया नहीं है और आके बताया कि सात है। वास्तव में आत्मा का स्थान परमधाम है और परमात्मा का भी स्थान परमधाम है। इसलिए हम आत्माएं भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है। तो इसीलिए कई लोग जब इन बातों को नहीं समझते हैं तो फिर एक और जवाब दे देते हैं, कहते हैं ये सब जो प्रकृति है ना ये ईश्वर है, ये पहाड़ नदियां फूल झरने ये सब बाग बगीचे यही सब ईश्वर है, बाकी और क्या ईश्वर है। अब ये प्रकृति तो प्रकोप भी लाती है, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, क्या नहीं आजकल प्रकृति के प्रकोप चल रहे हैं। एक सुनामी आती है कितनों को सागर में स्वाहा कर देती है, एक भूकंप आता है कैसे सब चले जाते हैं धरती में पता भी नहीं चलता, बाढ़ आती है क्या क्या होता है, आंधी तूफान बिजली चमकती है गरजती है, क्या नहीं हो रहा है दिन प्रतिदिन, ये समाचार हम रोज सुनते ही रहते हैं। तो अगर प्रकृति ही ईश्वर है तो ईश्वर इतना दुख थोड़ी देगा, वो तो सुख का सागर है। तो प्रकृति का भी अपना अस्तित्व है, प्रकृति भी सतो रजो तमो स्थिति में आती है, आत्मा भी सतो रजो तमो स्थिति में आती है प्रकृति के स्पर्श के साथ, लेकिन परमात्मा तो सदा न्यारा है। तो न्यारा जब कहते हैं तो कई कहते हैं उसका तो ना कोई नाम है ना रूप है। अब नाम भी नहीं रूप भी नहीं तो किसको याद करें हम? इसीलिए मन भटकता है कि आखिर याद किसको करें, ना उसको नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है। लेकिन नाम और रूप से न्यारा नहीं है, पर उनका नाम और रूप सबसे न्यारा है। अब इसको समझना होगा कि उनका नाम और रूप सबसे न्यारा कैसे है। उनका जो नाम है वो मनुष्यों की तरह नहीं है, मनुष्यों के जो नाम होते हैं वो संज्ञावाचक होते हैं, वो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नहीं होते हैं। कईयों के तो अपने नाम का भी पता नहीं होता इसका अर्थ क्या है। पश्चिमी दुनिया में तो नाम का अर्थ ही नहीं होता है। अगर किसी से पूछो आपका नाम क्या है, कहेंगे टॉम डिक हैरी जॉर्ज, उनका अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं होता है, बस ये नाम है। लेकिन परमात्मा का तो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ये उनके गुण हैं और उन्होंने ये कर्तव्य किए हैं। भले कोई किसी बहन का नाम शांति हो, शांति देवी भी रखवाते हैं, पर शांति उसके जीवन में नहीं है मानो, तो वो गुणवाचक नाम तो हुआ नहीं। नाम उसका विश्वनाथ हो और एक मकान भी उसके नाम पर नहीं है तो विश्वनाथ काहे का हुआ हा? लेकिन परमात्मा को तो विश्वनाथ कहते हैं, इसीलिए वो संज्ञावाचक नाम है दुनिया में। और ईश्वर का नाम उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर है। इसलिए नाम और रूप नहीं, लेकिन उनका जो नाम और रूप है वो दुनियावी नाम रूप से अलग है, उसको हम देखेंगे। फिर कई कहते हैं कि सारे ईश्वर के स्वरूप है, इसीलिए मनुष्य आज इतना मूंझ गया है जो आखिर में कह देता है भगवान है ही नहीं। अब परमात्मा हमें खुद आकर के अपनी पहचान दे रहे हैं। क्या पहचान दे रहे हैं? सबसे पहली पहचान ये है कि परमात्मा का वही स्वरूप होगा जिसको सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार कर सके, सर्वमान्य होगा, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, उस स्वरूप को स्वीकार कर सके। ये पहली बात बहुत बड़ी समझने की है। अब कोई भी देहधारी स्वरूप तो सभी धर्मों को स्वीकार्य नहीं होगा। हिंदू लोग श्री राम श्री कृष्ण को मानेंगे, हनुमान गणेश को मानेंगे, लेकिन क्रिश्चियन धर्म वाले मुसलमान धर्म वाले क्यों मानेंगे? क्रिश्चियन धर्म वाले क्राइस्ट को मानेंगे, हिंदू लोग क्यों मानेंगे? तो वो क्योंकि देह रूप है, और जहां देह रूप आ गया वहां मते बदल जाती है, भिन्न भिन्न मते हो जाती है। परंतु वो स्वरूप जो सभी को मान्य हो वो कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं होगा। तो क्या उसका स्वरूप है उसको भी हम पहचानेंगे। दूसरा, परमात्मा उसको ही कहते हैं जो सबसे ऊंचा हो। कई कहते हैं कि भगवान को किसने बनाया, कई प्रश्न करते हैं। अब भगवान को अगर किसी ने बनाया हो तो वो उनसे ऊंचा हो जाए। आज हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया तो हम क्या कहेंगे? माता पिता हमारे से ऊंचे हैं, क्योंकि जन्म दिया है। मातृ ऋण पितृ ऋण कभी चुकता नहीं होता है, जन्म दाता तो सदा ही हम उनके ऋणी हैं। फिर जिसने मुझे शिक्षा दी, स्कूल में पढ़ाया, वो प्राइमरी स्कूल टीचर सदा मेरे लिए ऊंचा है, भले मैं कितना भी पढ़ लिख गई, पीएचडी डिग्री ले ली, लेकिन प्राइमरी स्कूल का जो मास्टर होगा उनको मैं अभी भी सर ही कहूंगी। तो इसीलिए वो टीचर सदा हमारे से ऊंचा है, गुरु हमारे से सदा ही ऊंचा होगा, भले शिष्य उसका बहुत आगे चला जाए। जैसे विवेकानंद कितना आगे चला गया, दुनिया में नाम कमाया विवेकानंद ने, लेकिन फिर भी कहने में आएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य। भले उसके कितने भी शिष्य क्यों ना हो, पर वो खुद भी शिष्य था। तो इस हिसाब से देखेंगे, माता पिता, शिक्षक और गुरु, इनका ऋण कभी चुकतो नहीं होता है। इसलिए मातृ ऋण पितृ ऋण आचार्य ऋण ये सब ऋण माने गए हैं। परंतु परमात्मा को जब हम कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इससे क्या सिद्ध होता है कि वो माता पिता जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयं रचयिता है, उसकी उसको किसने रचा नहीं है। अब वो कौन होगा उसको हम देखेंगे। फिर तीसरा है कि केवल सबसे ऊंचा ही नहीं, उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनके समान भी कोई नहीं है, समान भी कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तो ही जान, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी, ऊंचे से ऊंचा भगवान भी है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा माना उनसे ऊंचा कोई नहीं, और तुम्हारी गत मत तुम ही जानो माना उनके समान भी कोई नहीं। इस संसार के अंदर जो भी हमारे सामने बातें आती है या चीजें आती है, ये सब सापेक्ष चीजें हैं। सापेक्ष क्यों है? क्योंकि उनकी किसी अन्य से भेंट की जा सकती है। ये गोरा है, ये काला है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, सबकी भेंट होती है एक दो के साथ, लेकिन परमात्मा की किसी से भेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके समान या उन जैसा लगभग भी कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा ही अनेक चक्रों में आती है जो इस संसार के अंदर है, इसलिए इन चक्रों के कारण आत्मा के लिए सापेक्ष कहेंगे। पाप आत्मा तो आगे पुण्य आत्मा, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आती है आत्मा, तो देह लेती है, देह छोड़ती है, फिर दूसरा देह लेती है, फिर छोड़ती है, ये चक्र के अंदर आत्मा आती है, परमात्मा नहीं आते इस चक्र में। फिर जहां जन्म मरण का चक्र है वहां कर्म और फल का भी चक्र है, आत्मा कर्म और फल के चक्र में भी आती है, इसीलिए आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। जैसा कर्म करेगी वैसा फल पाएगी। परमात्मा कर्म और फल के भी चक्र से परे अकर्ता भोक्ता है, और जहाँ कर्म और फल का चक्र है वहाँ पाप और पुण्य का चक्र है, क्योंकि कर्म पाप के होंगे या पुण्य के होंगे। परमात्मा न पाप आत्मा है बनता न पुण्य आत्मा बनता, वो तो परम आत्मा है। और जहाँ पाप और पुण्य का चक्र है वहाँ सुख और दुख का भी चक्र है, क्योंकि पाप कर्म से दुख मिलेगा, पुण्य कर्म से सुख मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। परमात्मा तो दुख सुख से न्यारा है, और ही उनके लिए कहते दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला सुख देने वाला, और आत्मा तो इस दुख सुख के चक्र में आती है, इसलिए जो इन चक्रों से परे है उनको परमात्मा कहेंगे। अब वो कौन है वो देखेंगे। फिर परमात्मा तो दाता है, जिस दाता के लिए कहते हैं देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक सकते हैं, देने वाले के तो भंडारे भरपूर हैं, इसीलिए शिव के लिए कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। तो परमात्मा तो दाता के रूप में देता ही रहता है, और अगर कोई देहधारी होगा वो दाता नहीं बन सकता है, क्योंकि शरीर कितना लेता है, खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, आराम भी देना है, हाँ ये भी देना है, देना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ये सब शरीर के लिए चाहिए, तो ये लेता कितना है और देता कितना कम है उसकी भेंट में। लेकिन परमात्मा तो कभी लेता नहीं है। अगर ईश्वर के नाम पर हम कुछ देते भी हैं तो वो तो लाख गुना करके वापस करता है, वो रखता नहीं है अपने पास। इसीलिए वो दाता को हमें पहचानना है, वो है कौन। फिर जितना ही वो दाता है उतना ही वो सर्वशक्तिमान भी है, ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिवान, यानी जिसकी शक्ति भी मापी नहीं जा सकती है। इंसान की शक्ति तो मापी जा सकती है, कई इतने कमजोर होते हैं जो 10-20 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते हैं, कोई ज्यादा उठाते हैं, कोई 200 किलो भी उठा लेते हैं, हाँ इनाम लेते हैं, रेसलर्स बनते हैं और वेट लिफ्टर बन जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो सब कंपैरिजन है। लेकिन परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, यानी उनकी शक्ति को भी हमें पहचानना होगा। ये नहीं कि सब कुछ वही करते हैं, आत्मा की अपनी शक्ति, आत्मा अपनी शक्ति आजमाती है, प्रकृति की अपनी शक्ति है, परमात्मा की अपनी शक्ति है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो भी समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए जो खुद हमें देते हैं। ये नहीं कि उनकी शक्ति यही है कि पत्ते पत्ते को वही हिलाता है, ये तो प्रकृति की शक्ति है। ये नहीं है किसी ने किसी को दुख दिया तो मानो भगवान ने दिया, उस आत्मा ने दिया, उसको फल मिलेगा। परमात्मा की शक्ति तो बेहद है, सारे संसार को बदलना, नर्क को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, ये परमात्मा की शक्ति है जो अन्य कोई इंसान कर नहीं सकता। इसीलिए उसको समझना है। फिर ओमनीशियंट माना सर्व का ज्ञाता है, वो ज्ञान का सागर है, जानी जाननहार है। परमात्मा के लिए कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है, आत्मा सब कुछ नहीं जानती। हम मनुष्य आत्माएं तो इतनी अल्पज्ञ हैं कि एक रस्सी पड़ी होगी उसको शायद डर के मारे सांप समझ लेंगे, ये सांप है, जबकि वो रस्सी है। वर्तमान में भी डर जाते हैं जबकि है कुछ नहीं। पर परमात्मा तो वर्तमान तो क्या, भूत और भविष्य उनके लिए इतना स्पष्ट है जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। इंसान की तो वर्तमान भी स्पष्ट नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, तो वो है कौन आखिर? परमात्मा के लिए कहते हैं कि सब कुछ जानता है। कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम यही कहते हैं पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं मालूम, भगवान जाने सच क्या झूठ क्या। इसलिए ईश्वर सब कुछ जानता है। अब वो कौन है? अगर हम धर्मों का इतिहास देखें तो किसी भी धर्म के धर्म पिता ने अपने को ईश्वर नहीं कहा। क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, लीड मी दाई काइंडली लाइट। इसलिए गिरजाघर में चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, उस ज्योति का प्रतीक गॉड इज लाइट। सूली पर चढ़ते समय क्राइस्ट ने पिता को याद करके कहा, हे पिता आप इन्हें क्षमा कर दें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, आप क्षमा कर दें। तो किस पिता को याद किया क्राइस्ट ने सूली पर चढ़ते समय? वो कौन है? पिता परमात्मा। और फिर मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, मोहम्मद ने कहा मैं पैगंबर हूं, अल्लाह का पैगाम लाया हूं। एक काला पत्थर है मक्का में जिसको संगे अस्वद काबा का पत्थर कहते हैं, उस पत्थर के प्रति बहुत श्रद्धा अर्पित करते हैं। तब अपनी हज यात्रा मुसलमान लोग समझते हैं कि हमारी सफल हुई। तो क्राइस्ट ने कहा फादर, खुद को सन कहा, बेटा कहा। मोहम्मद ने उसको अल्लाह कहा, नूर कहा, नूरे इलाही, और खुद को पैगंबर कहा, मोहम्मद पैगंबर। इसी प्रकार गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। सारा ग्रंथ अगर आप देखें एक ज्योति की महिमा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानिक होसी भी सच। वो सच कौन है जो आदि में भी था मध्य में भी है अंत में भी है आद जुगाद सब सत्य ही है? वो एक ओंकार कौन है? उस एक को हमें पहचानना है। गुरु नानक ने तो बड़ी नम्रता जताकर अपने लिए क्या कहा, नानक नीच सदा कह विचार, नानक दास, अपने को गुरु भी नहीं कहा। ये तो बाद में लोगों ने उनको गुरु कहा, बस नानक ही नानक ही अपने को कहता था। तो इसीलिए उसने भी किसको याद किया? एक को ही याद किया। ज़ोरास्टर थे पारसियों का गुरु, उन्होंने क्या कहा, औरा मज़दा, परमात्मा एक ज्योति है, इसलिए वो फायर टेम्पल बनाते हैं, आग जलाते हैं, वो आग अग्नि को ईश्वर मानते हैं। इसी प्रकार जितने भी धर्म पिताएं आए सबको तपस्या में भी दिखाया है, ध्यान में दिखाया है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर ध्यान की अवस्था में दिखाया है, उनको बोध हुआ। तो बोध कैसे हुआ, किसका ध्यान किया जो उसको वो बोध हुआ, जिससे उनको वो एनलाइटनमेंट आई और उसको समझ आई कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, उस ईश्वर में विलीन हुए। तो कौन है ईश्वर, अब इसके लिए हम थोड़ा और जानेंगे। भारत में चारों तरफ, उत्तर पश्चिम दक्षिण चारों तरफ, तो उत्तर में भी जाएंगे तो दक्षिण में भी जाएंगे, पूर्व में भी जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मठ है और इन मठों में शिव की प्रतिमा रखी जाती है और उनको स्वयंभू कहते हैं। कभी नहीं कहते कि बनाया गया, स्वयंभू। और जितने भी ये ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम, ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। ये कोई व्यक्ति अपने ऊपर नाम रखा है पर वो नाम का गुण तो नहीं होगा। महाकालेश्वर है उज्जैन में, महाकाल एक ही परमात्मा है, विश्वेश्वर एक ही परमात्मा है, त्रिम्बकेश्वर एक ही परमात्मा है। अब इसका क्या अर्थ है, और सबको मिला के कहेंगे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, सदा शिव है, कल्याणकारी है। अब वो कौन है, अमरनाथ में आप जाइए, वहां पर स्वयंभू बताते हैं कि बूंद बूंद के बर्फ कैसे वो पानी का पड़ता वो शिवलिंग बन जाता स्वयंभू। कुछ साल पहले बहुत गर्मी हुई थी तो वो पिघल गया था शिवलिंग, तो पुजारियों ने दर्शन दे कराना था तो कैसे हाथ से उनको बनाया, तो कितना विरोध हुआ था कि ये तो हाथ से बनाया गया स्वयंभू का है। तो स्वयंभू माना जिनका कोई रचयिता नहीं। पशुपति नाथ आप देखिए नेपाल में, जो पशु तुल्य उनका भी वो नाथ है, उनको भी ऊंचा करने वाला सबका नाथ है, दीना नाथ है, दीन बंधु दीना नाथ। तो दीनों को, गिरोहुओं को उठाने वाला पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सारे जो परमात्मा के नाम हैं, ये सब गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, इतने हीरे जवाहरात जड़े उस मंदिर में, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने उस मंदिर को लूटा, इतने हीरे जवाहरात ले गए। तो राजा विक्रमादित्य ने इतने सब हीरे जवाहरात क्यों लगाए थे, क्योंकि परमात्मा ने ही उनको वो सारा धन संपत्ति दी थी, दाता तो वही था, इसलिए उनका मंदिर बना करके वो हीरे जवाहरात उसमें जड़े। तो सोमनाथ माना ज्ञान का सोम रस पिलाने वाला वो नाथ, जिससे हम हमारी इंद्रियों को वो शीतल करते हैं। इसीलिए परमात्मा कौन है, कोई देहधारी नहीं है। रामेश्वर में आप जाइए, श्री राम का भी वो ईश्वर है। श्री राम को भी रावण पर जीत पाने लिए शिव से शक्ति लेनी पड़ी। गोपेश्वर में आप जाइए तो श्री कृष्ण के आगे भी शिव दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी असुरों का नाश करने लिए शिव से शक्ति लेनी पड़ी। तो परमात्मा हम उसको कहेंगे जो देवों का भी देव है, जिनसे देवों ने भी शक्ति लेकर के देव पद को प्राप्त किया। शिव शक्तियां गाई गई है, वो शक्तियां भी कौन है जिन्होंने शिव से शक्ति पाई। तो सर्वोच्च हम किसको कहेंगे, जिसको अन्य किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं सर्वशक्तिमान है और वो एक ही निराकार ज्योति स्वरूप है। यहाँ तक कि शंकर ने भी ध्यान अवस्था में शिव से शक्ति पाई है। शंकर को भी ध्यान में दिखाते हैं तो किसका ध्यान कर रहा है? तो शंकर किसका ध्यान कर रहा है? कोई देहधारी का तो नहीं कर रहा होगा। ऐसे नहीं कि श्री राम का ध्यान कर रहा है और श्री राम शिव का ध्यान कर रहा है या शंकर का ध्यान कर रहा है, पर श्री राम और शंकर दोनों ही एक निराकार ज्योति स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। सभी धर्म पिताएं भी उस एक ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं जिनसे उनको शक्ति पाई, और उसी को हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम कौन है? अभी हमने पहचाना एक ही निराकार ज्योति स्वरूप है। यहाँ दिखाया है मस्जिद चर्च मंदिर में 6 अक्षर है इंग्लिश में, और कुरान बाइबल गीता में 5 अक्षर है, लेकिन 6 में से 5 निकाले तो एक बचता है। तो परमात्मा सबका पिता है, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, क्योंकि वो सब एक है। आज सबका वो एक ही पिता है। सभी धर्म पिताओं ने उनको ही याद किया, इसलिए परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? ये संसार वसुधैव कुटुंबकम है, एक ईश्वर का परिवार है, क्योंकि एक ही पिता है सबका। अब वो एक पिता जिसको सन्यासी भी याद करते हैं, आदि शंकराचार्य ने भी वास्तव में शिव की पूजा की थी। ब्रह्म को याद करते हैं सन्यासी, पर वो ब्रह्म में रहने वाला वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। मुसलमान भी मस्जिद में जाते हैं, कोई मूर्ति नहीं है, वो भी निराकार स्वरूप को ही याद करते हैं जिसका कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म वाले भी ज्योति को ही याद करते हैं, सिख धर्म वाले भी ज्योति को ही याद करते हैं, और हम लोग भी उस एक ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही याद करते हैं जिसको हम शिव कहते हैं। तो शिव जब हम कहते हैं तो हमारा अभिप्राय उस ज्योति से है, पर वो ज्योति की पूजा कैसे हो? इसलिए ज्योतिर्लिंगम अंगुष्ठाकार प्रतीक बना करके उसकी पूजा की जाती है, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है, दाता है। तो इसलिए उस परमात्मा को हम कैसे याद करें वो अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर शाम को अधिक बताएंगे कहाँ उसको याद करें। वास्तव में परमात्मा का वही घर है जो हम आत्माओं का घर है। हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान परम धाम की निवासी है, जो 5 तत्वों से पार एक अखंड ज्योति का महतत्व है, जिसको मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम आदि नामों से याद किया जाता है। है बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु, अनंत शक्ति। उस अनंत शक्ति को हम ग्रहण कर सकते हैं, जैसे सूरज से हम किरणें ग्रहण करते हैं, एक गुलाब के फूल से हम सुगंध ग्रहण करते हैं, वैसे ही उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से, शांति के सागर परमात्मा से हम शक्ति, शांति की शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी वो समय आ गया है परमात्मा से वो शक्ति लेने का। क्यों? क्योंकि संसार में अधर्म बहुत बढ़ गया है। एक तरफ तो नीचे से विकारों की आग में धरती जल रही है, और दूसरी ओर वमों की आग में ऊपर से जल रही है। तो ऊपर से बमों की आग और नीचे से विकारों की आग, और दुनिया को ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन पर कब तक इंसान जिंदा रहेगा? जो किराए की सांस है वो तो ज्यादा समय नहीं चलेगा। तो अब ये धरती परिवर्तित हो रही है। परमात्मा जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर जीओडी कहते हैं, तो कैसे कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के लिए उसने ये सारी जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं ये सब निमित्त बनाया है, जो इस कलयुगी दुनिया के पापाचार को नाश करेगा और फिर एक सतयुगी दुनिया इस संसार में आएगी। तो हम किसको याद करें? तो जब हम शिव कहते हैं हमारा अभिप्राय शंकर से भी नहीं है, क्योंकि शंकर को भी आकारी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। उनको तो तपस्या में दिखाया है, उनको विनाशकारी कहते हैं। अगर उसकी तपस्या कोई भंग कर दे तो तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दे, तो विनाशकारी है। और परमात्मा तो कल्याणकारी है, इसलिए शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा को हम पहचाने और उनको याद करें, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, जो ज्योति स्वरूप है, सदा शिव है, बिंदु में सिंधु की शक्ति है और परम धाम का वो वासी है। और कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना पालना विनाश ये तीन कार्य कराते हैं और इस संसार को परिवर्तित करते हैं। अब उस परमात्मा को पहचान करके हम उसको याद करें। कैसे याद करेंगे उसका डिटेल तो हम आपको शाम को बताएंगे, लेकिन इतना ही अभी हम बताएंगे कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक सितारा हूँ और मेरा असली धाम परम धाम है, तो मन और बुद्धि से परम धाम चले जाए और महसूस करे एक अखंड ज्योति का महतत्व, और उस महतत्व में परमात्मा ज्योति स्वरूप विराजमान है, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। वो शांति का स्रोत है, प्रेम का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, सर्व शक्तियों का स्रोत है, और उनसे हम शक्ति की किरणें ले रहे हैं। अब यही संकल्प हम अपने मन में करें और आगे फिर आपको शाम को बताएंगे। तो पांच मिनट के लिए हम इसी स्वरूप का ध्यान करेंगे और महसूस करेंगे कि परमात्मा बिंदु में सिंधु की तरह है। ये लाल प्रकाश हमें संकेत दे रहा है कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं, आवाज से परे चले जाएं, एक असीम शक्ति को अपने अंदर में महसूस करें, परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़े, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, जो शांति के सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप। चले जाइए शांति के सागर की गहराई में, मन बुद्धि को इस देह की दुनिया से उकराम कीजिए, पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद तारा गण के प्रकाश से दूर, अखंड ज्योति के एक महतत्व में, जहां सुनहरा लाल प्रकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे प्रकाशमय दुनिया में मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा के सामने हो, जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। महसूस कीजिए उस बेअंत शक्ति को, उस बेहद स्रोत को जो शांति का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के स्रोत से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा में शांति की शक्ति भर रही है। मैं आत्मा हल्की हो रही हूँ, न्यारी हो रही हूँ, शांत हो रही हूँ, शक्तिशाली हो रही हूँ। ऐसी शक्ति का अपने भीतर में अनुभव करते जाएं, जैसे बूंद सागर में समाती जाती है। या सागर को ही बूंद में समा दे, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। अब इसी शक्ति को स्वयं में इतना भरपूर कर दे और फिर उसी भरपूर स्थिति में स्थित होकर वापस लौटे साकारी दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में। कर्म क्षेत्र पर और महसूस करे अपने अंतर में परमात्म शक्तियों को, जिनसे मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। इतनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा खुद को पहचान चुकी हूँ, शिव पिता को भी पहचान चुकी हूँ। अब शिव पिता से जो मेरे संबंध है वो सब फिर से जोड़ने हैं, जो कहीं टूट गए हैं। फिर से शक्तिशाली बनना है परमात्मा के सानिध्य में। इस कर्म क्षेत्र पर फिर से मन वचन कर्म से शांति की शक्ति को व्यक्त करें। यही राजयोग की सार्थकता है, जिससे हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। एक पिता परमात्मा की याद में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति, 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 ओम शांति।